نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 24 پارے کا تیسرا رکن شروع کریں گے اور آیت نمبر 44 ہے. کچھ آیات ہماری پچھلے حصے میں ہو گئیں ٹاپک کو پورا کرنے کے لیے, تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 44 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مرد مومن کا کلام جاری ہے, پیچھے بات ہو گئی تھی لیکن پیچھے سے جوڑنے کے لیے ہم نے اس کو دوبارہ پڑھا. پسند قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. آپ کو اس جملے میں بہت درد محسوس ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمان والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ ناصح. اور ناصح کون ہے؟ خیر خواہ. الدین و نصیحہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یاد رکھیے کہ ایک شخص نمازی ہو سکتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ دیندار بھی ہو اور وہ خیر خواہ ہو. اسی طرح روزے رکھنے والے, عمرے کرنے والے, حج زکوٰۃ کرنے والے بھی لوگ بعض اوقات دیندار نہیں ہوتے. سچا دیندار کون ہے؟ کہ جو لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے. جب آپ کے دل میں لوگوں کا درد آتا ہے نا, تو پھر آپ ان کو تانے میں نہیں دیتے, پھر غصہ نہیں کرتے, بلکہ کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے. یہ بات تانے کے انداز میں کہیں تو اگلے کو کھا جاتی ہے, لیکن درد بھر کے کہیں تو اگلے کا شعور بیدار ہو جاتا ہے, اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. اور یہ جملہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں سچ ہو. اس کو پتا تھا کہ آج میں جو حق بولنے والا ہوں, فرعون تو کیا اس کا پورا لشکر میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا, لیکن اس کو اعزازات نہیں چاہیے تھے, اس کو مفادات نہیں چاہیے تھے. اس کو پتا تھا کہ میری جان تک چلی جائے گی, مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے سے دشمنی کرو گے, لیکن میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. اور ایسے نازک موقع پر صرف انسان اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اور وہی ہوا. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اس کو بچا لیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جب بھی حق بات کہتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں, اور اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حقیقت میں اسی طرح کی باتیں کی گئیں, لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. اور ایسے لوگوں کو اللہ کب بچاتا ہے؟ جب ان کی زبان میں اتنا یقین ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ بھرے دربار میں فرعون کے سامنے حق بات کرنے کے باوجود اعلانیہ تو کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا تھا, لیکن خفیہ تدبیریں کی. کیونکہ یہاں لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ما مکرو, اور مکر تدبیر کہتے ہیں خفیہ چیز کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بچا لیا, اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. یہ کون سا عذاب تھا؟ یہ وہ عذاب تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں ہوا. دیکھیے کہ جب ہم سیرت سامنے رکھتے ہیں نا, تو ہمیں قرآن سمجھ آتا ہے, چاہے وہ سیرت محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر وہ سیرت موسوی ہو. جس طرح قرآن کو ہم سیرت نبوی کی روشنی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, اسی طرح حضرت موسیٰ کا بھی قصہ ہے. ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے بات کی, لیکن اتنے سال کی کشمکش چلتی رہی. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو تھا, وہ آل فرعون کا شخص جو تھا, اس نے حق بات جو یہ کی, یہ موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا ہے واقعہ. اس طویل کشمکش سے دل برداشتہ ہو کر آخر فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا, مگر اپنی سلطنت کے اس اتنے اہم شخص کو حق کہتا دیکھ کر فرعون کو یہ خطرہ ہو گیا کہ ان کے دلوں میں بھی اس کا اثر نہ آئے. لہٰذا پھر اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف ایک انتہائی قدم اٹھا لوں تاکہ میں اپنے آپ کو اور اپنے باقی لوگوں کو بچا لوں. اللہ تعالیٰ کہتے تم جو چاہو کر لو, لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان کی چالیں خود انہی کے ذمے آ گئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہتے ہیں وہا کبھی آل فرعون سوء العذاب, اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. दोजख की आग है जिसके सामने सुबह शाम वो पेश किए जाते हैं, और जब क्यामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म होगा कि आले फिरौन को शदीद तर अजाब में दाखिल करो। ये कौन सा अजाब है? ये अजाब बरजख है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि बरजख का सबूत इन आयात से मिलता है। अजाब कब्र का बात देख लीजिए, क्योंकि आप देखिए कि अजाब के दो मरहलों का जिक्र है ना, एक कमतर दर्जे का अजाब जो क्यामत के आने से पहले फिरौन और आले फिरौन को अब दिया जा रहा है, और वो ये है कि इन्हें सुबह शाम दोजख की आग के सामने पेश किया जाता है, जिसे देखकर हर वक्त उनको ये हौल उठता रहता है कि इस दोजख में हमें भी आखिर जाना है। और इसके बाद जब क्यामत आ जाएगी तो इन्हें वो असल और बड़ी सजा दी जाएगी जो असल में इनका मुकद्दर है, और उसी दोजख में वो झोंके जाएंगे, जिसका नजारा इनको डूबते वक्त भी करवा दिया गया और क्यामत की घड़ी तक कराया जाएगा। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बकरे को जिबा करने से पहले छुरी मुसलसल दिखाई जाए कि इससे तुम्हें अभी जिबा किया जाएगा। अल्लाह ताला देखे कि किस तरह एक इंसान को हक बात का इनकार करने की पादाश में मुसलसल अजाब में मुबतला करते हैं। और याद रखिए कि यह मामला सिर्फ फिरौन और उसके साथियों के लिए खास नहीं है, तमाम मुजरिमों को मौत की घड़ियों से लेकर क्यामत तक वो बुरा अंजाम नजर आता रहता है जो उनका इंतजार कर रहा होता है, और तमाम नेक लोगों को भी अच्छा अंजाम दिखाया जाता है जो अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार किया है। बहुत प्यारी रिवायत बुखारी मुस्लिम और मुसनद अहमद में इब्ने उमर से है कि जिसका खुलासा यह है कि अल्लाह के नबी ने कहा, तुम में से जो शख्स भी मरता है उसे सुबह शाम इसकी आखिरी क्यामगा दिखाई जाती है, खा वो जन्नती हो या वो दोजखी हो। इससे कहा जाता है कि ये है वो जगह जहां तू उस वक्त जाएगा जब अल्लाह ताला तुझे क्यामत के रोज दोबारा उठाकर अपने सामने ले जाएंगे। तो दुआ कीजिए कि हमारा ठिकाना अच्छा हो, बुरा ना हो कि हम बुरे को देख देख के और होलते रहे। और कितना अजाब होगा जब कहा जाए कि आप इनको इस असल अजाब में डाल दो। जहन्नम के कुछ मनाजिर, वइज़ यतहाज्जूना फिन्नार, फिर जरा ख्याल करो उस वक्त जब ये लोग दोजख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। दुनिया में जो लोग कमजोर थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे, हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या तुम यहाँ नारे जहन्नम की तकलीफ के कुछ हिस्से से हमको बचा लोगे? ये कौन कहेंगे? इन लीड्स को कहेंगे वो फॉलोअर्स जो उनके नक्शे कदम पे चलते थे। क्या उस वक्त उनको ये उम्मीद होगी कि हमारे ये लीडर्स और बड़े हमें बचा लेंगे या कमी कराएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि इनके ऊपर तो ये हकीकत खुल चुकी है कि ये लोग हमारे किसी काम में आने वाले नहीं। तो फिर क्यों कहेंगे? तो इसका जवाब नोट कीजिए कि वो उनको जलील और रुस्वा करने के लिए कहेंगे कि बताओ आज ये कर सकते हो? दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े बातें करते थे, क्या अब तुम हमारी यहाँ कुछ मदद कर सकते हो? ये बिल्कुल ऐसा है कि जो बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मारे और वक्त पड़ने पे काम ना कर सके। अल्लाह अकबर, कैसी रुसवाई होगी! वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहाँ एक हाल में हैं और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। फिर ये दोजख में पड़े हुए लोग जहन्नुम के अहलकारों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि हमारे अजाब में बस एक दिन की कमी कर दे। अल्लाह अकबर, हम भी मुजरिम, तुम भी मुजरिम। अल्लाह की अदालत बेलाक, लिहाजा उसके फैसलों को नहीं को बदल सकता, ना कमी ना बेशी, बल्कि आओ जरा मिलके अब सभी बात करते हैं। वो पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल बैजीनात लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे, हाँ। जहन्नुम के अहलकार बोलेंगे, फिर तो तुम ही दुआ करो, और काफरों की दुआ इकारत ही जाने वाली है। यानी जब रसूल रोशन दलाइल लेकर आए, जब तुमने उनको ना माना, फिर इस वजह से आज तुम पे ये मामला हो रहा है, तो बताओ कि आज कहाँ हो सकता है कि हमारी बात मानी जाए? अल्लाह ताला कहते हैं, मांग लो, मिलना तो नहीं है। मांगो या ना मांगो, मिलेगा कुछ भी नहीं। और हकीकत ये है कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना, यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद इस दुनिया की जिंदगी में भी लाजिमन करते हैं, और उस रोज भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे और जब जालिमों को इनकी माजरत कुछ भी फायदा ना देगी और इन पर लानत पड़ेगी और बदतरीन ठिकाना उनके हिस्से में आएगा। आखिर देख लो कि मूसा की हमने रहनुमाई की और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बना दिया, जो अक्लो दानिश रखने वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। कौन सी किताब? तौरात। वक्त में क्या थी इसके अंदर? हिदायत थी। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि जाओ फिरौन का मुकाबला करो, बल्कि अल्लाह ने कदम कदम पर उनकी रहनुमाई की, उन्हें कामयाबी की मंजिल पर पहुंचा दिया। असल में इसमें नबी सल्लम को तसल्लियां दी जा रही हैं, हम आपके साथ भी ऐसे ही करेंगे। मक्का के लोग, कुरैश के कबीले के लोग अगर आपको सता रहे हैं, दुख दे रहे, तो हमने आपको ऐसे नहीं छोड़ा, हम आपकी मदद करेंगे और बरकतें उनको मिलेंगी जो हकीकत में इस किताब से जुड़ेंगे। और मूसा का इनकार करने वाले हकीकत में उन नेमतों से महरूम रह गए थे। उन पर ईमान लाने वाले बनी इसराइली की किताब के वारिस बनाए गए। इसी तरह आज अगर अल्लाह के नबी पर ईमान ला रहे हैं लोग, तो कल किताब के वारिस यही होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी को सब्र की दावत दी, फसबिर इन्ना वादल्लाही हक्कुन, पस ए नबी सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा बर हक है। अपने कसूर की माफी मांगो और सुबह शाम अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह करते रहो। हकीकत ये है कि जो लोग किसी सनद और हुज्जत के बगैर जो इनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ रहे हैं, इनके दिलों में किब्र भरा हुआ है, मगर वो इस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं जिसका वो घमंड रखते हैं। बस अल्लाह की मदद मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। इन आयात में देखिए ठंडे दिल से बर्दाश्त करने की बात है, और अल्लाह ताला उस वादे का यकीन दिला रहे हैं जो उसका नबियों के साथ था, और वो क्या कि दुनिया में भी मदद और आखिरत में भी। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी को किस कसूर पर माफी मांगने की दावत दी गई। तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम जब मुखालफतों को देख रहे थे, अपने साथियों की मजलूमियों को देख रहे थे, तो आपके दिल में एक बेचैनी थी कि अल्लाह मदद जल्दी आ जाए, कोई मौजजा दिखा दिया जाए ताकि ये कुफार कायल हो जाए, कोई बात हो जाए जिससे मुखालफत का तूफान ठंडा हो। देखिए अल्लाह ना करे अगर आज हम में से किसी को भी दीन के नाम पे फितनों का सामना करना पड़े, तो हम कहेंगे ना कि अल्लाह जल्दी से इसको खत्म कर दे, अल्लाह करे ये बंदा रास्ते से हट जाए जो लोगों को दीन से दूर कर रहा है। तो नबी की ये बात भी उसका गुनाह बन जाता है। आम इंसान तो ऐसी बातें सोचते हैं, आम लोगों के हक में ये गुनाह नहीं था, लेकिन नबी सल्लम के बारे में कामिलीन की छोटी छोटी सैयाद जो होती हैं वो भी बड़ी बड़ी बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबी को जिस मुकाम पे फाइज करना चाह रहे थे इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि नहीं, आप उलूल अज़्म बनिए, आपसे बेसब्री की उम्मीद नहीं है, अल्लाह के वादों पे यकीन रखिए, माफिया मांगिए और एक पहाड़ की मजबूती की तरह जम जाइए अपने मौकफ पे। जैसा कि आप जैसे बड़े शख्स को होना चाहिए, ऐसे ही लोग जो होते हैं फिर वो हकीकत में अला मुकाम को हासिल करते हैं। इसमें हम सब के लिए एक सबक है कि पौधा वक्त लगता है तभी उगता है, बच्चा बड़ा होगा एक वक्त के साथ, माँ जितना मर्जी खिला ले बच्चा नहीं बढ़ेगा जब तक कि अल्लाह ताला उसको सेहत ना देना चाहे। तो कुछ चीज़ों पे सब्र ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पे वक्त ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पे इंतज़ार ज़रूरी है, शुक्र ज़रूरी है, कुछ चोटें खानी ही पड़ती हैं, इन्हीं चोटों को खा खा कर ही तो बड़े होते हैं। आप बताइए कभी कोई माँ चाहेगी उसका बच्चा गिरे? सच बताइए, गोदों में बच्चे लेने वाली माएँ पूछें खुद से, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा गिरे? कोई नहीं चाहती। तो क्या बच्चे नहीं गिरते? गिरते हैं। और अगर कोई बच्चा कभी ना गिरे तो आपको पता है क्या होगा, बड़े होने के बाद उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगी, जरा उसको तेज हवा भी छुएगी ना बीमार हो जाएगा, ठोकर लग जाएगी तो वो बिस्तर पे चला जाएगा। गिरते हैं शख्स सवार, चोटे खाने वाले बड़े होते हैं। दीन के काम में जितनी चोटें पड़ेंगी उतनी आपके साथियों में मजबूती आएगी। यकीन करें बाज दफा इंसान दुखी हो जाता है, हाय अल्लाह ये क्या बातें हैं, हाय अल्लाह ये ऐसा मामला क्यों करते हैं लोग, इनको अकल नहीं, इनको समझ नहीं, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, इनको नहीं दिख रहा। लेकिन फिर उसका जवाब ऐसे लगता है कि हमारे सामने इन आयात में आ जाता है कि हर चीज मुख्तलिफ चीजों में से गुजर के जाती है। तो बस तुम अल्लाह ताला पे नजरें लगा लो, क्योंकि अल्लाह की जात सब कुछ करने वाली। फिर आप देखिए सब्बिक भी हमदी रब्बी का बिल आशीष, ये है वो खूबसूरत बैंडेज और मरहम जो अल्लाह के लिए काम करने वालों को लाजिम है, और वो है हमद और तस्बीह। अल्लाह की राह में पेश आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत हासिल होती है जिक्र से, तस्बीह से। सुबह शाम हमदो तस्बीह करो, क्या मतलब? दो मानी हो सकते हैं, एक तो यह कि हमेशा अल्लाह को याद रखो सुबह और शाम भी, दूसरा ये कि इन खास वक्तों में नमाज अदा करो। और बाज कहते हैं कि इसमें इशारा पांच नमाजों के औकात की तरफ है जो इस सूरत के नाजिल होने के कुछ मुद्दत के बाद तमाम अहले ईमान पर फर्ज कर दिए गए। यहाँ जो लफ्ज अशीश आया है अरबी जुबान में जवाले वक्त से लेकर रात के इब्तदाई हिस्से के लिए बोला जाता है, इसमें जोहर से ईशा तक की चारों नमाजें आती हैं, इसको आप कह लीजिए पीएम्स। और इबकार का लफ्ज बकिर से बाकिरा, बिल्कुल कौरी लड़की को बाकिरा कहते हैं ना, तो सुबह की पोप फुटने से लेकर तुलुए आफ्ताब के वक्त को कहते हैं जो नमाज फजर का वक्त होता है, ये एएम्स कह लीजिए। तो आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला इशारों ही इशारों में हम सबको सबक दे रहा है कि जहां दीन के कामों में कोई मुश्किल आ जाए तो तुम उस वक्त अल्लाह ही को याद करो, जिसको याद करेंगे उसकी तरफ से मदद भी आती है। किस अल्लाह को जिसकी कायनात इतनी बड़ी है? अब अल्लाह ताला में कुछ दलाइल दिला रहे हैं कि देखो इस रब को याद करने का फायदा क्या होगा, कि کیسے قال خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب بولو، تم بن سکتے ہو؟ خود بنا سکتے تھے؟ نہیں، یہ تکبر ہے جو بات نہیں سمجھ آنے دے رہا۔ یہ ان کے نفس کا غرور ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا رب، اتنی بڑی کائنات، اس کا بھیجا ہوا رسول، اتنا بڑا نبی، آج یہ اپنے آپ کو سرداری کا حقدار سمجھتے ہیں، ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ چلے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو ان سے بتاؤ کہ یہ کس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے؟ اللہ کا۔ اور جس کو اللہ بڑا بنا دے وہی بڑا بنے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے قد بڑے نہیں کر سکتے، یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، جس طرح فرعون کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ کر موسیٰ علیہ السلام بے فکر ہو گئے، اسی طرح آج اے نبی، آپ ان قریش مکہ کی دھمکیوں اور سازشوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ جائیں، پھر آپ بے فکر ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے۔ اللہ کا کام کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن کوئی بات نہیں، راستہ ایک ہی ہے، بس لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، تقریباً 3 سے زیادہ رکوع تھے اوپر، کہ جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے سرداروں کی سازشوں پہ تبصرہ کرنے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس طرف رخ کر دیا کہ دیکھو، اگر تمہاری نظریں رب پہ لگی ہیں تو تم پھر اس کائنات پہ غور کرو گے۔ دیکھو کتنی بڑی کائنات، اتنا کچھ اللہ نے بنا دیا، تم انسان تو اس کے اندر کیا کرتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو جو رب تمہاری اس کائنات کو بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، کیا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میرا تو دل کرتا ہے اس آیت کے حصے پہ لکھ لیں کہ تم کس کھیت کی مولی ہو۔ اکبر من خلق الناس، لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کائنات میں ہیں۔ اتنا بڑا سمندر اس نے پیدا کر دیا، اتنے بڑے آسمان بنا دیے، تو کیا انسان تو بڑا ہے؟ نہیں، تو مان جاؤ کہ وما یستوی الاعمى والبصیر، یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا۔ کون سا دیکھنے والا؟ عبرت کی نگاہ سے، بصیرت کی نگاہ سے، اور نہ دیکھنے والا کافر، اس کو کیا ہے؟ اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، یعنی ایماندار اور صالح اور بدکار ٹھیک ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ کہ کوئی نہیں، قیامت آنی، چھوڑ دو، یہ نادان ان کو کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے آنے کے دلائل اب دے رہے ہیں کہ دیکھو، وہ رب اتنی پیاری کائنات بنا کر تمہارے لیے تیار کر کے کھڑا ہے، کیا وہ تمہارے لیے اس کے بعد ایک اور نہیں کر سکتا؟ اب یہ سب کشمکش چلتی رہے گی، ان نسات لاتیتن، آئے گی قیامت، مان جاؤ۔ کتنی شدتیں، اگر آپ دیکھیں لاتیتن، لفظوں میں بھی آپ دیکھیے کتنا جوش ہے، کرو کیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پوری سورت مومن کے اندر جس شرک کی نفی ہے نا، وہ شرک فی دعا ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر لے، شاید میں نے شروع میں بولا کہ نہیں بولا، لیکن اینڈ پہ سورت کے اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سورت میں توحید فی دعا کی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے دعائیں دوسروں سے مانگتے ہو، مدد مجھ سے چاہتے ہو، کھڑے کسی کی قبر پہ ہوتے ہو، مدد تم مجھ سے مانگتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھ سے مانگو، پھر دیکھو، اگر میں تمہاری بات نہ کروں، اگر میں تمہیں سب کچھ نہ دوں، تو پھر کہنا کہ ہمارا کوئی رب نہیں۔ توحید، آخرت، ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ نے جملہ حقوق کسی کو نہیں دیے دعائیں قبول کرنے کے، کہ فلاں سے دعا کرو، اس کی سٹیمپ لگواؤ، اس سے سائن کرواؤ، پھر میری ٹیبل پہ پیپر آئے گا تو مانوں گا، ہرگز نہیں۔ دیکھیے، یہ وہ موضوع ہے جس میں آج مسلمانوں کی اکثریت غرق ہے، تو آئیے ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ 3 باتیں ہیں اگر آپ توحید فی دعا یا شرک فی دعا کے نظریے کو سمجھنا چاہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان دعا کس سے مانگتا ہے؟ جس کو سمیع بصیر سمجھے، جس کو سپر نیچرل پاورز کا مالک سمجھتے ہیں۔ اور دعا مانگنے کا محرک کیا ہے؟ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں خود وہ کام نہیں کر سکتا جو میں اپنے سارے اسباب استعمال کر کے، سارے ذرائع اور وسائل کو لے کر بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایسی ہستی ہے جو میری مدد کر سکتی ہے ایسے وقت پہ؟ اور اس ہستی کو بن دے کے پھر پکارتا ہے، پھر ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں پکارتا ہے۔ कभी तन्हाइयों में, कभी बाबा से बुलंद, कभी चुपके चुपके, कभी दिल ही दिल में उससे मदद खेलते जाया करता है। ये सब क्यों करता है? अकीदा है ना कि वो हस्ती उसको हर जगह हर हाल में देख रही है, उसके दिल की धड़कन को भी सुन रही है, उसके जिस्म में उभरने वाले जो मद्दो जजर है उसको भी वो सुन रही है। तो ये चीज इंसान के दिल में अल्लाह की वजूदगी का एहसास पैदा कर देती है। फिर उसको इंसान को ये भी यकीन होता है कि वो सुन भी रहा है और मदद को पहुंच भी सकता है, बिगड़ी भी बना सकता है। जब इंसान दुआ की हकीकत को समझ लेता है ना, फिर कुछ मुश्किल नहीं है कि इंसान अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती को पुकारना अपने लिए तौहीन समझता है। उसको पता है ये शिर्क है, ये जुल्म है मेरा उस जात के साथ जिसके साथ मैं इतने इतकाद रखूं, और उसके बदले में एक इंसान जो जिंदा भी अब नहीं रहा, मुर्दा है कब्र के नीचे, उसको मांग लूं। दूसरी बात समझ लीजिए, और वो क्या कि किसी भी हस्ती के बारे में इंसान का अपनी जगह ये समझ बैठना कि वो खुद इख्तियारात का मालिक है, इससे कोई लाजमी नहीं है कि उसको इख्तियारात मिल जाए। मतलब मैं हम समझ लूं या आप समझ लें कि किसी मुल्क पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, मैं सोचूं कि मेरे हाथ में पाकिस्तान के सारे फैसलों का इख्तियार है, तो क्या मेरे या किसी का मेरे बारे में समझ लेने से ये हो जाएगा इख्तियार? झूठ है, बेवकूफी की बात है कि मैं ऐसी बात कहूं। तो मालिक मालिक है, कोई समझ ले ये दूसरे की गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, उसका नाम लगा दे, आपके घर के बाहर कोई दूसरा नाम लगा दे तो घर उसका नहीं होगा। तो जो मालिक नहीं है, आप उसको मालिक समझ लेंगे तो भी वो मालिक नहीं बनेंगे। आप कहते रहिए अल्लाह ने नहीं ये किसी को कहा कि तुम दुआएं सुनो बुजुर्गों की, फरिश्तों को, औलिया कराम को, जिन्नों को, नहीं, फर्जी देवताओं को। आप समझते हैं, शौक से कीजिए, मालिक मालिक है, बंदा बंदा है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के सिवा दूसरों से दुआ मांगना बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप इसको आप एक मिसाल से समझिएगा कि कोई शख्स दरख्वास्त लिखता है कि हुकूमत की तरफ भेजे, लेकिन हुकूमत के उस नुमाइंदे को वो दरख्वास्त देने की बजाय उसी जगह और भी लोग जो अपनी हाजतें लेके बैठे हुए उनमें से किसी एक के आगे अपनी दरख्वास्त पेश करे, फिर हाथ जोड़ जोड़ कर इल्तिजाए करे, प्लीज हजूर ये कर दीजिए, आपका यहाँ हुक्म चलता है, मेरी मुरादें आप पूरी करेंगे। बताइए, पहली बात है कि ये हरकत है ही हमाकत और जहालत की, गुस्ताही भी है। हाकिम को छोड़कर बाहर बैठे हुए लोगों से बात की जाए, जहालत भी है कि जब ऐसे शख्स को कहा जाए जो खुद के अल्लाह के बंदे, मैं तो सुबह से खुद बैठा हूं, मेरी तो अपनी दरख्वास्त नहीं ली जा रही, कोई वीजा लगवाने जाए, अंदर उनको कहने की बजाय एम्बेसी में कि मुझे वीजा दे दें, पेपर रख लें, बाहर लाइन में खड़े कोई कह दे प्लीज आप मेरे वीजा लगवा दें, तो हंसेगा ना कि अल्लाह के बंदे मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो फिर जो मर्जी कोई कह ले, बात तो समझ आती। अब इसके बाद कहिए कि अदूनी अस्तजीब लकुम, जिसको अपने रब की बात समझ आ गई फिर बात बन जाएगी। बात लंबी हो रही है लेकिन जरूरी है। यहाँ एक और लफ्ज बड़ा काबिले गौर है, अन इबादती। दुआ और इबादत को यहाँ एक दूसरे के मुतरादिफ में पेश किया गया, ठीक है? पहले फिक्रे में जिस चीज को दुआ कहा गया उसी को दूसरे में इबादत कहा गया, इससे पता चलता है कि दुआ ऐन इबादत है। अद्दुआ हुल इबादा हदीस में आता है, और अद्दुआ हुल मुखुल इबादा, इबादत की जान दुआ है। दूसरी बात ये समझ आती है कि अल्लाह से दुआ ना मांगने वालों के लिए घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ने के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इससे पता चलता है कि अल्लाह से दुआ मांगना बंदगी का तकाजा है, और इससे मुंह मोड़ना तकब्बुर है। कुछ लोग जब बड़े बन जाते हैं ना तो किसी से नहीं मांगते, तो कहते हैं हम अल्लाह से भी नहीं मांगेंगे, वो अपने खालिक और मालिक खुद बनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ऐन इबादत है, फिर उसके बाद आपने बिल्कुल यही आयत तिलावत फरमाई। हजरत अनस कहते हैं कि दुआ इबादत का मगज है, तिर्मिजी की रिवायत है। अबू हुरैरा से रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गजबनाक होता है, तिर्मिजी की रिवायत है। तो यहां एक बात और भी खुल गई जो बहुत सारे जहनों में उलझन डालती है, और वो क्या कि लोग दुआ के मामले पर इस तरह सोचते हैं कि जब तकदीर की बुराई और भलाई अल्लाह के इख्तियार में है, जब वो सारे फैसले कर चुका, वही होगा जो वो चाहता है, तो फिर हमारे दुआ मांगने का क्या फायदा? तो इससे तो फिर दुआ की सारी अहमियत ही निकल गई। भाई दुआ का क्या फायदा है अगर फैसला नहीं बदलना? तो यहां अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, देखो तुम्हारी दुआओं से तुम्हारी तकदीरें बदल जाएंगी। जब अल्लाह कह रहा अस्तजीब लकुम, तो फिर कजा और तकदीर एक अलग चीज है और दुआ मांगना और है। फिर तो अल्लाह खुद कहेगा सॉरी मैं नहीं कबूल कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अब तुम मेरे तकदीर चुके लिख दी है, तो दुआ कबूल करने के इख्तियारात मेरे हाथ से चले गए। हरगिज नहीं। इसलिए बस इन बातों को अपने दिल के अंदर उतार लीजिए कि सिर्फ रब की बात आता है जो हमारी बातें सुनेगी, बात को मानेगी। हम कहेंगे ना मिले तो ना मिले, ठीक है तकदीर है लेकिन बदलेगी। हजरत सलमान फारसी से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने कहा तकदीर को कोई चीज नहीं डाल सकती मगर दुआ। तो अल्लाह अपना फैसला खुद बदल सकता है, लेकिन कब? हमारी दुआओं की वजह से। जब इंसान कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला इसको वही चीज देता है या उससे कम ज्यादा देता है। आप इसकी मजीद रिवायात अगर अपनी दिलचस्पी के लिए सुनना चाहें, क्योंकि ये मौजू लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो किताबुद दुआ सुनिए। इकबाल किलानी की किताबों में किताब बड़ी डिटेल से माशाल्लाह पढ़ी और पढ़ाई हम लोगों ने। आप उसमें से दुआओं के मौजू को पढ़िए और शेयर कीजिए, बल्कि नए लोगों में बात करने के लिए दुआ का मौजू बड़ा खूबसूरत होता है। अक्सर लोग आपको कहीं बुलाते हैं, आए दुआ करा दें। दुआ कराने जाए ना तो दुआ के बारे में दो चार बातें सुना दें, रिवायात सुना दें, जिसकी वजह से उनको फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बात सुनना भी अच्छा लगेगा। कौन से अल्लाह से मांगो? अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल्लैला लितस्कुनू फी। अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला की कुदरतें दिखाई जा रही हैं कि उससे दुआ मांग रहे हो तो वो कोई छोटी हस्ती नहीं है कि तुम मांग के उससे शायद शर्मिंदा हो जाओगे और वो तुम्हारी दुआ नहीं कबूल करेगा, बल्कि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। कितने ना शुक्र है इंसान, बार बार अल्लाह ताला कहते हैं लोगों शुक्र करो, क्या हो गया तुम्हें। यहाँ देखिए रात और दिन की बात हुई, क्योंकि दुआ का कबूल होना रोशनी है, और दुआ कबूल ना हो तो अंधेरे छा जाते हैं गम के। अंधेरी रात गम की पड़ती है। अल्लाह ने दुआ की कबूलियत और ना कबूलियत के बाद रात और दिन की बात करके बता दिया कि देखो रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इसी तरह तुम्हारे हालात भी पलटेंगे। जब अल्लाह सबका मालिक है तभी तो रात को दिन में ला रहा है ना, तो क्या वो तुम्हारे गमों को नहीं दूर कर सकता? इसलिए उससे मांगो और शुक्र अदा करो। न शुक्र इंसान जो होता है वो किसी तरह का भी अच्छा काम नहीं करता। लेकिन बात ये है कि तुम किधर पलटाए जा रहे हो, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। फाना तूफकून, तुम किधर बहकाए जा रहे हो, क्या हो गया तुमको? लोगो, वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम्हारा रब है, हर चीज का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो? इस तरह ये सब लोग बहकाए जाते हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। तो ये सोच के उल्टा होने की तरफ इशारा है कि अल्लाह के अलावा किसी और को करने वाला समझना और किसी और के आगे माथे को टिकाना, ये सोच लेना कि ये काम कर देंगे, ये झूठ करते हैं। अल्लाह ताला की और खूबियों का तذکرہ, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुम्बद बनाया। देख सकें तो जरूर ऊपर देखें। मैं इस वक्त जहां से बात कर रही हूँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ी खिड़की है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गुबार बारिश धुन छाई हुई है भाई, और उसके अंदर अल्लाह ताला के ऐसे लगता है कि हुक्म के गुलाम दरख्त खड़े हैं, कहीं पहाड़ कहीं कुछ। एक इंसान क्यों अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं खड़ा होता? कभी इस नीले गुंबद को देखा आपने? कभी इस पे गुबार, कभी कुछ। रात को हमेशा की नमाज पढ़ रहे थे, ऐसे मुझे अच्छा लगता है बाहर पढ़ना, तो एक साथी थे उनके साथ मैंने टेरेस में पढ़ी। तो यकीन करें कि आसमान के नीचे किनारे समझ लें कोई आप दूर से दिखता है, लेकिन पूरे आसमान का कोई ऐसी ही जैसे किसी भी चीज के गिर्द आपने बेल लगाई हो, तो कोई 5-6 फुट अपनी नजर में कह लें ऐसा रंग था कि जैसे डार्क ग्रे होता है, और उसके बाद ऊपर बाकी पूरा आसमान हल्का ग्रे। मैंने कहने लगी कोई पाकिस्तान में सोच सकता है कि ईशा की नमाज आप पढ़ रहे हैं, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और आसमान पे सुरमई रंग है? इमेजिनेशन में भी नहीं आती ये बातें, लेकिन मेरा रब करके दिखाता है ना। हम क्यों नहीं उसकी कुदरत पे गौर करते? हमारा दिल क्यों उसके अलावा किसी और में अटका हुआ है? जो जात इतनी प्यारी रात को दिन में, दिन को रात में बदल सकती है, क्या लोगों वो तुम्हारे गम दूर नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, सिर्फ देखने वाली निगाह लाओ जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई। देखिए अपनी सूरतों को तसव्वुर में, ये नहीं कि आईना खोल के बैठ जाए, आंखें बंद करें आपको अपनी सूरत दिखेगी। खुद को पुकारो, खुद को देखो, वो रब तुम्हें कैसे सजाता है, कैसे संवारता है। और आज हम सूरतों के सहर में खो गए। अल्लाह कहते सूरत बनाई और बड़ी आसन बनाई, हम कहते मेरी नाक मोटी, मेरे कान छोटे, मेरी आंखें छोटी, मेरी पलकें लंबी। आज हम कितना सूरत कॉन्शियस हो गए, अपनी तो अपनी अपनी बच्चियों की। पैदा होते बच्चे का मुंह देखते हैं, रंग काला है, रंग दबा हुआ है, नाक चपटी है, शादी कैसे होगी? शादी हो जाए तो दुल्हन के तबसरे, कैसी थी, कैसी लग रही थी, और कोई मर जाए तो मैयत के चेहरों पे तबसरे। अल्लाह अकबर। याद रखिए सूरतों से नसीब नहीं बनते, जिसने सूरत बनाई है ना उसी ने सीरत बनाई, उसी ने तकदीर बनाई। अगर सूरत दबी हुई है तो जरूरी नहीं तकदीर भी दबी हो। कई खूबसूरत हुसन की परियां देखी रोती भी दिखती हैं। तो कभी अपने आप को इस ब्यूटी में ना कॉन्शियस कीजिए। अल्लाह ताला जिसको जैसा बनाए कबूल कीजिए, जिसने तुम्हें पाकीजा चीजों का रिस्क दिया। देखिए नोट कीजिए, जरूरत थी लस पाकीजा चीजों की, बस तुम्हें रिस्क दे दिया। नहीं, इशारा है कि रिस्क भी खाओ तो पाकीजा खाओ। ऐसे ही उठ के हर चीज पे मुंह ना मारो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लाकर तुम्हारे लिए कितने इंतजाम किए हैं। आसमान इतना खूबसूरत, ऐसे ही तुम्हें ला के नहीं रख दिया कि आसमान के नीचे पड़े और हर वक्त खौफ हो कि ऊपर से कुछ गिरे और तुम पे पड़ जाए। फिर तुम्हें जमीन पे रखा, तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, तुम्हारी नोक पलक दुरुस्त की, तुम्हें बोलती हुई जुबान दी, सुनते हुए कान दिए। तुम्हारे दिमाग में कितनी सलाहियतें, कितनी बीसियों मशीनें इकट्ठी एक जिस्म में तुम्हारे लगी हुई हैं। कभी तुमने सोचा, कभी गौर किया इस पे तुमने? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया, किसी नबी वली देवता में कुदरत थी कि तुमको बनाता? जब उसने तुम्हें बना दिया तो तुम उसको छोड़कर अब दूसरों के पास जाते हो। खाने के लिए क्या दिया, कभी अपनी फूड को तो देखे, क्या गल्ले, क्या तरकारियां, फल, दूध, शहद, गोश्त, नमक, मर्च, मसाले, क्या क्या नहीं दिया। कभी हमने सोचा भी नहीं कि अल्लाह की जात ने हमारे लिए क्या कुछ किया। हमें बहुत फिक्र होनी चाहिए कि क्या हम उस रब का हक अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हमारी औकात दिलाई कि देखो लोगों कैसे फल, जायके, टेस्ट, मीठा, खट्टा, कड़वा। आप देखिए कि तीन टेस्ट कहते हैं ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीन चार हैं। कुछ अर्से पहले मुझे किसी ने बताया कि अब एक और टेस्ट भी लाया जा रहा है सामने। अब वो पता नहीं क्या बला होगी, कैसे होगा, आर्टिफिशियली उसको जुबान पे ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं लोगों तुम्हें पाकीज़ा रिस्क दिया। अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के सोच लिया करो, अपने फ्रिज को खोल के देखो, फ्रीजर को खोल के देखो, तुम्हें अगर ये रिस्क ना दिया जाता, तुम पैदा कर दिए जाते, सोचो तुम्हारी जिंदगी का क्या रंग होता। नहीं मानते कि पैदा करने वाला सिर्फ खालिक ही नहीं है, हकीम भी है, रब्बे रहीम भी है, जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। क्या आखिरत में तुम्हें भूखा मारेगा? क्या तुम उसके हुक्मों पे चलोगे तो क्या तुम्हें वो इस जिंदगी से कोई बुरी जिंदगी देगा? नहीं, वही अल्लाह है। कौन सा? फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, जिसके ये काम है, तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है, वो कायनात का रब, वही जिंदा है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी को तुम पुकारो, अपने दीन को इसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इस पे गौर कीजिएगा, क्यों दूसरों के गुनगाते हो? तारीफें अल्लाह की हैं, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया, उसके गुन गाओ। तुम्हारी जुबान अगर नगमे गाए तो उसके गाए, लोगों के आगे ना जाओ, असल जिंदगी उसकी है, क्योंकि वो अपने बलबूते पे जिंदा है, था, है, रहेगा। तुम्हारा तो एक दुनिया में चंद दिन का दाखला था, हो गया, कर लिया, और दैट्स इट, खत्म। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तद'ऊना मिन दूनिल्लाह, ए नबी, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो इन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बय्यिनात आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सर तस्लीम खम कर दूं। यानी ये भी नहीं कि तुम्हें तो शिर्क से रोकता हूं और मैं खुद शिर्क कर रहा हूं, नहीं, मैं हर एक हुक्म अल्लाह ही का मानता हूं जो उसने कहा। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही है मौत देने वाला, वो जिस बात का भी फैसला करता है, बस एक हुक्म देता है और वो हो जाती है। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने इन आयात में कितने खूबसूरत तरीके से तख्लीक के मराहल को पेश कर दिया। आज डॉक्टर हैरान है कि ये सारे मरहले कहाँ से कैसे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले बता दिया। वक्त मुकर्रर है, दुनिया में आने का भी, दुनिया से जाने का भी, रब के पास खड़े होने का। अल्लाह सुबहान तआला के पास से बच्चा दुनिया में आता है, एक मिनट आगे पीछे नहीं होगा, वापस ले जाना किसी के बस में नहीं है। अल्लाह ने ये सिर्फ इसलिए पैदा किया कि तुम मरो मिटो खत्म हो जाओ, खाओ पियो ऐश करो मौज मस्ती करो, नहीं, उस रब के आगे झुको, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। जिंदगी के हर हिस्से का एक काम रख दिया। बचपन में खेलता अच्छा लगता है बंदा, अगर उसमें बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए तो फिक्र लग जाए लोगों को। इसी तरह बड़ा बंदा बच्चों की तरह खेले तो फिक्र लग जाएगी। बूढ़े का और रूप, बच्चे का और औरत का और बड़न का और, कितने प्यारे उसने तुम्हारे साथ मामले कर दिए। तो क्या तुम उस रब को छोड़कर दूसरों की तरफ जाओगे। आप देखिए कि यहाँ रब बिल आलमीन का लफ्ज आ गया ना, कुरान पाक में ये कितनी दफा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तकरीबन 6 दफा ये आयत आती है कुरान पाक में। यहाँ 65 आयत में तो है ही है, इसके अलावा सूरह फातिहा की आयत नंबर 1, सूरह अल अनाम 45, सूरह यूनुस 7:10, इसी तरह पीछे सूरह जुमर में हम पढ़ चुके हैं सूरह साफात 182 के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी भी जुबानों पर यही तराने होने चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला की जात जो हकीकत में इंसान के सारे मामले को दुरुस्त करती है। करो क्या, समझो, गौर करो, फिक्र करो, साहिब कुन फयकून के साथ मामला अपना दुरुस्त रखो। वो तुम्हारे लिए एक लम्हे में हालात बदल सकता है अगर तुम करने वाले होगे, अल्लाह की मर्जी पे चलोगे। अलम तर इल्लज़ीन युजादिलून फी आयातिल्लाह, तुमने ये देखा इन लोगों को जो अल्लाह की आयतों में झगड़े करते हैं, कहाँ से वो फिराए जाते हैं। ये लोग जो इस किताब को और इन सारी किताबों को झुटलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी, अन करीब इन्हें मालूम हो जाएगा। अब अगली आयतें दिल से सुनिए, दिमाग नहीं इस्तेमाल करें, सिर्फ दिल पे लें। कैसे अल्लाह सुबहान तआला क़यामत के दिन के मंजर हमारी आंखों के सामने लाते हैं। और अगर हमारा दिल फिर भी ना पिघले, अगर फिर भी हम अपने आप को ही बड़ा समझते रहें और हम लिए दिए रहें और हम लोगों तक हक ना ले जाना चाहें, तो ये हमारी मर्जी है। फरमाया क्या होगा इनके साथ, इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम वस्सलासिलु युसहबून, जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे चले जाएंगे, फिर दोजख की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है अल्लाह के सिवा वो दूसरे खुदा जिनको तुम शरीक करते थे। वो जवाब देंगे, खोए गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को ना पुकारते थे। इस तरह अल्लाह ताला काफिरों का गुमराह होना साबित कर देगा। इनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा इंजाम इसलिए हुआ, तुम हक के बगैर मगन थे, फिर इस पर इतराते थे। अब जाओ, जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है, बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। अब देखिए कि जिसके जिस्म में हसास दिल हो, वो तो इन आयात को सुन के कभी भी ऐसे नहीं गुजर जाएगा, फिक्र लग जाएगी उसको कि अल्लाह, ये ठोकरें खाने वाले दुनिया में भी धक्के खाते रहे और आखिरत में भी इनका यही अंजाम हुआ। उस वक्त एक इंसान क्या करेगा, ऐसे नहीं लग रहा कि जानवरों को पकड़ के उनकी खुरलियों की तरफ ले जाया जा रहा है। प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर पानी मांगेंगे तो दोजख के कारिंदे इनको जंजीरों से खींचते हुए ऐसे चश्मों पे ले जाएं जहां खोलता हुआ पानी हो, जब पी के फारिग हो जाए तो इनको खींचते हुए वापस ला के बांध दें कि दोजख की आग में झुको। अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों को आज दुनिया में अगर हम हक पहुंचा सकें तो कितनी बड़ी बात है। अस्तग़फिरुल्लाह। अब जाओ, जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। क्या लग रहा है ये जुमला, गेट आउट, निकल जाओ, तुम्हारा यही रास्ता है, तुमको हमेशा वहीं रहना है। और धमकी, बहुत ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। क्या बता दिया, बड़े बनते थे, छोटे भी ना रहे, और ही छोटे हो गए, जलील और रुस्वा हो गए। और आज आपके साथ जो ये कर रहे हैं आप, इस पे फसबिर इन्नवादल्लाहि हक, फस ए नबी सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा बरहक है। अब ख्वाह हम तुम्हारे सामने ही इनको इनके बुरे नतायज का कुछ हिस्सा दिखा दें जिनसे हम इनको डरा रहे हैं, या इससे पहले तुम्हें दुनिया से उठा लें, पलट कर आना तो इन्हें हमारी ही तरफ है। बार बार देखिए सब्र की बात, इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हालात कितने सख्त थे। फिर मजीद तसलियां, वलकद अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक मिनहुम मन क़ससना अलैक, ए नबी, तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से बास के हालात हमने तुमको बताए हैं और बास के नहीं बताए। किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर खुद कोई निशानी ले आता। इशारा है कि ये नबी सल्लम से निशानियां मांग रहे थे, तो कहा कि नबी का भी ये काम नहीं है कि वो खुद निशानियां ले आए। ये ऐसी बातें करके ये सोच साबित करते हैं कि शायद नबियों के भी इख्तियार में सब कुछ है। कहा नहीं, मुझसे अल्लाह का काम है, नबी का काम नहीं है। پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی منافع ہیں، اور بھی فائدے ہیں۔ یہاں سے اب دیکھیے موضوع پلٹ رہا ہے، سورت کا اینڈ ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں منہ مانگے معجزے نہ دیں۔ کہا نہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو بہت خود بندہ ہوں اللہ کے حکم کا، اور ہم کیا، کسی بھی نبی نے آج تک معجزے خود نہیں دکھائے، یہ تو اللہ کے حکم سے سب کچھ آتا تھا۔ اور معجزے دیکھنے ہیں تو یہ جانور چلتے پھرتے دیکھو، گھاس کھاتی ہوئی گائیں دیکھو، بکریاں دیکھو، پھینسے دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ دنیا میں دکھا رہا ہے۔ اگر اس کو دیکھ کے تمہیں رب نہیں نظر آیا تو معجزوں سے کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں پر پہنچ سکو، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تم کو دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ ایسے نہیں لگتا کہ سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ سوچو، غور کرو، فکر کرو، اس کی صفات کو دیکھو، آنکھیں کھولو، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا۔ جب کل پلٹنا ہے تو آج پلٹ جاؤ، دیر کس بات کی ہے، ضد چھوڑ دو، بحث چھوڑ دو، لیکن یہ دنیا انسان کو پلٹنے نہیں دیتی۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جتنا لوگ آگے جا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اتنا اللہ کے حکموں میں پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے حکم دے رہے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ دیے۔ یہ جو آثار ہیں نا پچھلے لوگوں کے، اصل میں یہ ہم سب کے لیے ایک واقعہ ہے کہ آج ہم بڑے ہیں، کل وہ بڑے تھے، لیکن ہوا کیا کہ اس دنیا میں چلتے پھرتے ان کو اس دنیا میں رہنا ہی نہ آیا، اللہ ہی کے حکموں کو توڑنے والے بن گئے۔ آج بھی دیکھیے کہ دنیاوی علم رکاوٹ بن رہا ہے اللہ کے راستے میں پہنچنے میں۔ آج بھی یہی لگ رہا ہے کہ لوگ جتنا دنیا کا علم لیتے ہیں، کیوں، پیسہ کماؤ، اسی کو کامیابی سمجھو، اپنی مرضی سے پیسے کو خرچ کرو، اور علم الوحی یہ تو پابندیاں لگائے گا۔ جب نبیوں کی بات مان لیتے تو دنیا کا فائدہ بھی اٹھاتے، آخرت کا بھی اٹھاتے، آج کیا لیا، صرف دنیا کا فائدہ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی، کدھر گئیں ڈگریاں، کدھر گیا، کچھ بھی تو ساتھ نہیں گیا۔ فلما جاتهم رسلهم بالبینات، پھر جب ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا۔ ہائی لائٹ کر لیں اس کو۔ آج بھی لوگوں کے پاس اب دین کی دعوت لے کے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں سوری، ابھی پڑھنا بہت ہے، ابھی بچی کا یہ امتحان ہے، وہ ہے، ہائی نہیں، دل تو بہت چاہتا ہے لیکن ابھی پڑھنا ہے، نہیں ابھی کالج، ابھی یونیورسٹی، ابھی جاب، ابھی یہ، اور وہی بات ہے، کارے جہاں دراز سے اب میرا انتظار کر۔ دعا کیجئے کہ آج کی نسلیں بھی کہیں اس دنیا کے علم کے اندر ہی نہ کھو کے رہ جائیں، کہ اللہ کے نبی آئیں اور یہ ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے کیا کہہ دیں، بس جی ہم مگن ہیں جو ان کے پاس ہے، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج پھیر میں آئے ہوئے نہیں لوگ دکھتے، ایک گھن چکر بنے ہوئے، پڑھنے سے لے کے کمانے اور آخری دن تک زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے، کھولو کے بیل کی طرح کی زندگی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے بھائی بہن اس حقیقت کو سمجھے، پتہ نہیں ہے، ورنہ پتہ چل جائے تو کبھی بھی کوئی اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو سچا دین علم الوحی آپ کو دین بھی دے گی اور دنیا بھی دے گا، سب کچھ ملے گا اسی کے اندر، اور پھر اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا۔ وخسر هنالک الکافرون، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ تو یہ تھی سورۃ المومن، ایمان کے تقاضے، توحید فی دعا، اور انبیاء کرام کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے اس مضمون سے بھری ہوئی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری بھی دل کی آنکھیں کھول دے اور ہم اس وحی کے علم کی قدر پہچان سکیں، اور صرف ایک رب سے ڈریں، صرف اسی سے مانگیں، صرف اسی کو اپنا بڑا مانیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.